आज है 29 अक्टूबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में। मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर में 8 जुलाई से अशांत हुए हालात के बाद कर्फ्यू और तनाव जारी। शिक्षा हुई ठप तो अब होने लगे हैं स्कूलों पर हमले।
चूंकि तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, हम कैसे कहेंगे कि कौन चला रहा है। हुकूमत को देखना चाहिए जो घरों पर रात के वक्त जो क्रैक डाउन करती है।
अभिभावकों ने किए प्रदर्शन। बच्चों के भविष्य को लेकर उठने लगे हैं सवाल। कौन है जिम्मेदार, कैसे निकाला जाना चाहिए इसका समाधान। इन्हीं मुद्दों पर होगी इंडिया बोल में बहस सबसे थोड़ी ही देर में। पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने एफबीआई से कहा है कि वो बिना देर किए ये जानकारी दे कि ईमेल मामले की नए सिरे से जांच क्यों की जा रही है। एफबीआई का कहना है कि उसे नए ईमेल मिले हैं जिसमें हिलेरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहते हुए दी गई सूचनाएँ शामिल हो सकती हैं। हालांकि हिलेरी का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि नई जाँच से एफबीआई के इस मामले को बंद करने के फैसले पर फर्क नहीं पड़ेगा। उधर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह मामला दोबारा खोला जा रहा है और ये वाटरगेट के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैंडल है। रिपोर्टों के मुताबिक ये ईमेल हिलेरी की एक सहयोगी के पूर्व पति से जुड़े हुए हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कहना है कि बढ़ती हिंसा पर काबू करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। हिंसा की वजह से बीते दो दिन के दौरान कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बामबारी जिले के करीब ईसाई और मुस्लिम मिलिशिया के बीच झड़पें हुई हैं। स्थानीय पुलिस और शांति सेना पर भी हमले हुए हैं। रेडक्रॉस के मुताबिक उत्तर कोरिया में बाढ़ की वजह से तबाह हुए इलाकों में घरों को दोबारा बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अगस्त में उत्तर कोरिया के हैमग्यांग प्रांत में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। कई सहायता एजेंसियां घर बनाने के काम में मदद कर रही हैं जिससे सर्दियों के शुरू होने के पहले घर तैयार किए जा सके। रेडक्रॉस का कहना है कि इस काम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेहद कम मदद मिली है जिससे जब तापमान गिरेगा तो खाना, दवा और गर्म कपड़ों की कमी हो सकती है। रेडक्रॉस के प्रवक्ता पैट्रिक फुलर ने कहा,
The response, I would say, has been disappointing. It's a $15.4 million emergency.
मैं कहूंगा कि प्रतिक्रियाएं निराश करने वाली हैं। करीब 3 लाख लोगों को एक साल तक मदद करने के लिए $154 लाख की मदद की ज़रूरत है, लेकिन हमें सिर्फ $38 लाख मिले हैं। हमें अपनी योजनाओं में कटौती करनी पड़ रही है। ये थे पैट्रिक फुलर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के एलेपो से मिली रिपोर्टों के मुताबिक वहाँ विमानों के जरिए विद्रोहियों पर हमले जारी हैं। हमले उन इलाकों में किए गए हैं जहाँ कल विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। विद्रोही पूर्वी एलेपो में सरकारी घेरेबंदी को तोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक सरकार के नियंत्रण वाले पश्चिमी एलेपो में विद्रोहियों के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। यमन से मिली रिपोर्टों के मुताबिक ताइज शहर के करीब सऊदी गठबंधन सेनाओं के हवाई हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय वनडे टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम वनडे जीत लिया है। भारत ने 270 रन का लक्ष्य रखा था, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 79 रन पर आउट हो गई। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
कौन जला रहा है कश्मीर में स्कूलों को? इन दिनों अशांत घाटी में यही सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद हालात अस्थिर हैं। वहां हुए प्रदर्शनों हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल हैं। कर्फ्यू तनाव के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूल बीच में खुले तो छात्र नदारद, और अब लगातार स्कूलों को जलाने की खबरें आ रही हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज कश्मीर घाटी में अभिभावकों ने पोस्टर लेकर स्कूलों को बंद करने के खिलाफ मार्च भी निकाला। इन अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद करने से कौन सी आज़ादी मिल जाएगी। कश्मीरी बच्चों के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं सवाल। क्या है उनका भविष्य? कौन है उनकी पढ़ाई को हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-2-7001 पर। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर, श्रीनगर से ही वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी, और हम कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रियाज, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज अभिभावकों ने प्रदर्शन किए हैं, ये स्कूलों को बंद करने का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों की क्या मांग थी?
जी देखें, ये तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे, मतलब मास्क थे वो, निकाब पहने हुए लोग थे, और इनका कहना है कि स्कूलों को या जो एजुकेशन है उसको, जितने भी विवाद हैं, चाहे राजनीतिक विवाद हैं या दूसरे किस्म के विवाद हैं, उनसे मुक्त रखा जाए ताकि बच्चों का जो भविष्य है उस पर कोई प्रभाव न पड़े।
जी, तो इन्होंने चेहरे छिपाए हुए थे, जैसा कि हमने ट्विटर पर अभिभावकों की तस्वीर भी देखी, और हाथ में गत्ते के ऊपर सफ़ेद कागज चिपकाया हुआ था जिस पर उर्दू में लिखा हुआ था, तो क्या कहना क्या चाहते थे ये लोग?
जाहिर है, देखें इसमें मामला ये है कि यहाँ पे जो सिचुएशन हुई है 3.5 महीने से, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तो बच्चे ही हुए हैं। अभी 14 साल की बच्ची जो इंशा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एम्स में भी भर्ती थी, यहाँ भी थी, उन्हें मुख्यमंत्री खुद देखने भी गई, बल्कि अपनी आंखें भी उन्होंने उनको ऑफर की थी, वो भी एक स्टूडेंट है। तो उसके बाद जो खबरें उनकी आई हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, और इसी तरह से कोई 400-500 ऐसे बच्चे हैं, वो भी इसी एज ग्रुप के हैं। जाहिर है कि जितने भी घायल लोग हैं उनकी संख्या भी हजारों में बताई जाती है, उनमें से सभी तो ऑन रोल नहीं होंगे स्कूलों में, लेकिन उनमें से जो अधिकतम है वो स्कूल चिल्ड्रन हैं। तो स्कूली छात्रों पे जब इस तरह पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट से, तो ये जो स्कूल बंद हो जाते हैं बंद से, तो उसे ये एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जो है उनकी बन जाती है। तो लिहाजा ये जो है मामला, ये राजनीतिक करण इसका हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से जिद पकड़ी हुई है एजुकेशन मिनिस्टर नईम अख्तर ने और प्रशासन ने कि भाई एग्जाम्स होंगे, और दूसरी तरफ से बच्चे कह रहे हैं कि उनके 4 महीने जो है वो एक तरह से वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं, उनको जहनी तनाव का सामना है। तो इस संदर्भ में वो एग्जाम की या इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अजीब सा एक मिस्टीरियस एलिमेंट ये जुड़ गया है कि स्कूल जलाए जा रहे हैं। कोई 2 दर्जन स्कूल जो है वो अब तक जल चुके हैं, स्कूली इमारतें जलाई गई हैं, और अब ये जो पेरेंट्स की रैली निकली है या मार्च कहिए आप, कितने लोग ये थे, ये लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये मांग कर रहे हैं उसको इस वक्त सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बड़े पैमाने पे नहीं है। जब कोई कुछ लोग एक जेन्युइन मांग कर रहे हो, पढ़ाई को बहाल करने की मांग कर रहे हो, स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हो, लेकिन उसमें अपने चेहरे छुपा रहे हो, तो इसका मतलब है कि समाज में उस मांग को इस वक्त मान्यता नहीं है बड़े पैमाने पर।
लेकिन ऐसा क्यों है कि समाज जो है स्वीकार नहीं कर रहा है उनकी मांग को? किस चीज का डर है उन लोगों को?
डर की बात नहीं है, मैंने आपको एक संदर्भ बताया कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, खास तौर से ये जो ताजा चरण है इस एजिटेशन का, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही हुए हैं। कोई 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और 100 से ज्यादा लोग जो मरे हैं, उनमें से ज्यादातर की उम्रें जो है वो 6 साल से 25 साल के बीच में है। तो कहीं ना कहीं वो तो कॉलेजेस में या स्कूल्स में तो ऑन रोल रहे होंगे, और मेरी आज भी कुछ बच्चों से बात हुई, वो कहते हैं कि जो लोग जेलों में हैं, 6,000 तो खुद पुष्टि की है सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने, कि 6,000 लड़के जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है उनमें से कईयों को तो बेल आउट किया गया होगा, लेकिन बच्चों का कहना है कि जो लोग जेलों में हैं हम उनको उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे, पहले जो भी करना है सरकार को, चाहे रिव्यू करना है या तफ्तीश करनी है, जब तक वो तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चे कहते हैं कि चार महीने का गैप देके एग्जाम्स को डेफर किया जाए। वो लोग कहते हैं अच्छा। दूसरी तरफ से सरकार का कहना है कि जेलों में हम जो है परीक्षा का इंतजाम करेंगे, वहां पे उसका बंदोबस्त करेंगे परीक्षा लेने का। बच्चों का कहना है कि हम तो अपने घरों में परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो जेलों में जो लोग होंगे वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी उनका मानसिक संतुलन कैसा होगा, वो किस तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये पूरा एक तरह से एक मिक्सअप हो गया है, दोनों तरफ से इसमें जो है राजनीतिकरण हुआ है, ऐसा एक मतलब व्यू पॉइंट है इस वक्त जनरली।
जी, ऐसा एक विचार निकल के आ रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर, और हमारे साथ एक छात्रा जुड़ी है, हम इनकी पहचान नहीं बता सकते हैं। करीब 100 दिन से ज्यादा कश्मीर बंद है, जिसका हर चीज पर असर पड़ा है, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है, और अब उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप 12वीं में पढ़ती हैं, बहुत अहम साल है आपके लिए, किस तरह से देख रही हैं कि इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पर?
हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 12th, इसके बाद जो भी बच्चा, फॉर एग्जांपल नॉट मी, कोई भी बच्चा जो होगा उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर होता है कि उसे को इसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में जाना है। अब 100 डेज के गैप के बाद तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट कि अब वो करियर के लिए प्रिपेयर कर सके, और 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो देखे और बच्चों के लिए
जी, लगता है इस छात्रा से संपर्क हमारा टूट गया है। श्रीनगर से वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। आपके सामने पूरे हालात हैं सुजात, आंदोलन एक तरफ है लेकिन क्यों स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है?
जी
सुजात साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ, आवाज आ रही है।
जी, क्यों स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है?
देखिए सुशीला, ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल पिछले 4 महीने से जो कश्मीर जिस सूरत हाल से जूझ रहा है उसका एक नया डायमेंशन सामने आया है, वो ये कि स्कूल जल रहे हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती कश्मीर में ये है पिछले 26 साल से कि हम जब भी कोई ऐसी इस किस्म की कोई घटना घटती है जिसका बराह रास्त कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता है तो वो हम नामालूम लोगों के खाते में डालते हैं। और इन स्कूलों को जलाने का मामला भी कुछ उसी तरह से है कि ये नामालूम लोगों के खाते में डाला गया है और कोई नहीं कह रहा है कि किसने किया, क्यों किया। रिएक्शंस तो बहुत आ रही है, जो हमारे अलगाववादी लीडर हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया में भी बहुत ही इसके खिलाफ एक जो है एक रिएक्शन देखने में आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि कौन कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है जिसका शायद जवाब हम ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो प्रशासन है, इंतजामिया है, उन पे भी जिम्मेदारी है कि वो देखें, क्योंकि मैं इससे पहले आपका प्रोग्राम सुन रहा था, कोई कह रहे थे कि कई हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमने कल भी ये प्रश्न रखा कि अगर आप 7,000 लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं तो आपके पास इतना बड़ा एक सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, आप इन लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक जिस तरह से एक सियासत की नजर ये एजुकेशन यहाँ की हो गई है, बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जिनके जो बच्चे हैं उनको उनके भविष्य के बारे में फिक्र है। ये भी सही है कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं, कई लोगों की बीनाई गई है, वो भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी में। लेकिन उसके साथ साथ ये देखने की भी जरूरत है कि क्या हम 15 लाख के करीब जो छात्र हैं उनको एक साल की इस एजुकेशन से महरूम रख सकते हैं?
जी, 15 साल क्या हम शिक्षा से महरूम रख सकते हैं? और इसी मुद्दे पर जो है इंडिया बोल में बहस हो रही है। आपने अलगाववादी नेताओं की बात की, मैंने अब से थोड़ी देर पहले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से बात की और पूछा कि क्यों हो रहे हैं ये हमले स्कूलों पर, और अभिभावकों ने जो स्कूल बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन किए और कहा कि हड़ताल बंद हो, तो उनका कहना था?
देखिए ना, ये इस मोमेंट को जो हमारी मोमेंट एक जनवन काज के लिए चल रही है और जिसमें इतनी कुर्बानियां दी हैं, जिसका मैंने आपके सामने सरसरी तज़किरा किया है, इसको सबोताज करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि
कौन सबोताज करना चाहता है, गिलानी साहब कौन सबोताज करना चाहता है?
यहाँ की हुकूमत सबोताज करना चाहती है।
नहीं तो आपका ये कहना है कि ये जो स्कूल है क्या ये हुकूमत जला रही है? कौन जला रहा है इन स्कूलों को? ये जो बच्चों की
तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, हम कैसे कहेंगे कि कौन जला रहा है? हुकूमत को देखना चाहिए, जो घरों पर रात के वक्त जो क्रैक डाउन करते हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं होगा कि कौन चला रहे हैं ये स्कूल? 7,000 बच्चे हैं जो जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, कॉलेजों में पढ़ने वाले, मदरसों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनको गिरफ्तार करके जम्मू जेलों में ले जाया गया है।
लेकिन जो आज पेरेंट्स ने, जिन पेरेंट्स ने आज प्रोटेस्ट किया है, उनका ये साफ साफ कहना है कि स्कूल बंद करने से कौन सी आजादी मिल जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप?
ये जो हमारी जुदजहद चल रही है, ये जुदजहद जारी रहेगी जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं करेंगे।
नहीं, आपका मकसद से स्कूली बच्चों का क्या लेना देना? गिलानी साहब, आपके आपके मकसद से स्कूली बच्चों का क्या लेना देना? उनका भविष्य क्यों अधर में लटके, उनका भविष्य क्यों अंधकार में जाए, ये बताइए। वो आज की जनरेशन है जी,
बच्चों को यहाँ की हुकूमत जो है वो उनको तशद्दुद कर रही है। मैंने आपसे कहा 7,000 के करीब बच्चे जेलों में ठोंसे गए हैं, आप ये क्यों नहीं मानते हैं? इस हकीकत को क्यों नहीं मानते हैं आप? जहाँ 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं, उनमें 7,000 बच्चे हैं, जवान हैं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में पढ़ने वाले, वो क्यों गिरफ्तार हैं? उनको क्यों छोड़ा नहीं जा रहा है?
जी, मैं अभी गिलानी साहब, मैं अभी ट्विटर देख रही हूं और ये ANI है, समाचार एजेंसी ANI पर ट्वीट किया गया है एक पेरेंट के हवाले से, जिसका ये कहना है कि गिलानी साहब की जो फैमिली है वो सेफ है, लेकिन हमारे जैसे गरीब लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और मुझे अपनी लाइफ का डर है, इसीलिए मैंने अपना फेस ढका हुआ है।
ये बातें आप जो कर रहे हैं ये होती रहती हैं, पता नहीं
हम
क्या
नहीं कर रहे हैं, ये ANI पर ट्वीट है, ये ANI पर ट्वीट है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए। जी, मैं बिल्कुल सुनूंगी गिलानी साहब। एक और ट्वीट लेती हूँ मैं, एक और
करवा रही है, जो कुछ करवा रही है हुकूमत करवा रही है, वही स्कूलों को जलवा रही है और वही बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहे हैं और बच्चों को गेल्ट पैलेट से उनकी बिनाई खत्म की जा रही है।
गिलानी साहब, ये लोग वही के बाशिंदे हैं, ये वही के बाशिंदे हैं जहां पर आप रहते हैं। जी गिलानी साहब, एक मिनट, जी मैं बात सुन रही हूँ, बस एक सवाल मेरा और पूछ लीजिए, एक बात मेरी भी सुन लीजिए गिलानी साहब। ये ANI पे एक और ट्वीट है जिसमें एक पेरेंट कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, गिलानी साहब की पोती तो एग्जाम दे रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब हो रहा है? इस पर क्या जवाब देंगे आप? इस पर क्या जवाब देंगे गिलानी साहब आप? जी गिलानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये थे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। इंडिया बोल में हम बात कर रहे हैं कश्मीर में कर्फ्यू और हड़ताल के बाद क्या है बच्चों का भविष्य। हमने शिक्षा मंत्री नईम अख्तर से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। और हमारे साथ एक कश्मीर से ही शिक्षक जुड़े हैं और एक और छात्रा हैं, उनकी हम पहचान आपको नहीं बता सकते हैं। पहले हम एक छात्र के पास ये जाना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सरकार राज्य सरकार कह रही है कि नवंबर में जो तय किया गया है समय, उसी के मुताबिक एग्ज़ाम होंगे, तो क्या अब जब 3 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है तो किस तरह का असर देख रही हैं शिक्षा पर वो?
हाँ जी, अब मैं कहना चाहती हूँ कि जब अब गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए ना कि बच्चों का फ्यूचर कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब जब 100 गैप। हेलो
जी, सुन रहे हैं आप, बोलिए।
हाँ जी जी, ये जो देखिए कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने जब 100 डेज हमारा ऑफ रहा और बच्चे स्कूल नहीं गए, कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो किस तरह आएंगे और किस तरह वो एग्जाम में बैठने चाहिए इसके लिए। और दूसरी बात सिक्योरिटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप आइए एग्जाम दीजिए, तो हमारे पास क्या गारंटी है कि जो बच्चा घर से निकलेगा अपने पेरेंट्स के साथ कि वो सेफ है? क्या पता कोई भी आ सकता है, उसे प्रोटेस्ट वहां पे हो सकता है और उसमें अगर उस बच्चे को लगा तो किस पे, मतलब कौन किस पे ब्लेम जाएगा, गवर्नमेंट पे, बच्चे पे, किस पे?
तो अब जब आप पढ़ती हैं तो क्या अब घर में ही पढ़ाई हो रही है इन दिनों? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में मेकशिफ्ट के तौर पर शिक्षक जो है कुछ घरों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन और कहीं मस्जिद में पढ़ा रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो ये भी बताती हैं कि कई बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ही।
हाँ जी ये बिल्कुल ये बात सच है, लोकली लोगों ने काफी लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सारे बच्चों को आपस में पढ़ा रहे हैं, मगर जो रियलिटी है कि जब जो स्कूल एजुकेशन है वो आपको किसी मस्जिद या किसी लोकल एरिया में नहीं मिल सकती है, विच इज मतलब ये प्रैक्टिकल बात है कि आप लोगों को स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल एक रेगुलर, स्कूल सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बहुत सारी सोशलाइज करने के लिए भी जाते हैं, और सोशलाइज जो है वो हमारा सोशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इसके बाद अब हमारी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए ये तो स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वो मस्जिद में और वो बाकी सारी जगहों पे मतलब कॉमनली हमें वो सब नहीं मिल सकता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी मिसिंग है उसमें।
और जैसे कि 12वीं की हो एग्ज़ाम्स हो या 10वीं के एग्ज़ाम्स हो, एक तरह से वो आपका फ्यूचर तय करते हैं कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे, तो काफ़ी अहम साल होते हैं ये, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही है, क्या हो पाती है, शिक्षकों से बात हो पाती है?
हाँ जी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों के लिए इंटरनेट की भी फैसिलिटी का खत्म कर दी गई है और इसकी वजह से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, मुश्किल से हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए हम तैयार हो रहे हैं खुद ब खुद ही, और अगर इस बार कम मार्क्स आ गए तो ये गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं होगा, इसमें तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमें 100 डेज ऑफ रहा, हम इसमें स्टूडेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंटरनेट भी हमारा बंद है, इसकी वजह से हम कुछ सोशलाइज भी नहीं कर सकते और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं पता है या टीचर्स के साथ ही ऑनलाइन इंटरेक्ट करें वो भी हमें नहीं है।
जी लगता है उनसे संपर्क फिर टूट गया है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एक शिक्षक हैं और ये जानना चाहेंगे कि ये बताया जा रहा है कि 50% जो सिलेबस है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है और अब हायर सेकेंडरी की परीक्षा जो है नवंबर में ही होगी ये सरकार ने तय किया है, आपकी भी बातचीत होगी जो पेरेंट्स हैं उनसे, बच्चों से बातचीत होती होगी, क्या स्थिति क्या है वहाँ पर?
अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है?
जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है।
असल बात यह है कि यहाँ पर जुलाई में ये स्टार्ट हुआ, जुलाई से पहले तकरीबन बच्चों ने, मुझे लगता है जहाँ तक जो मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैंने अपना सब्जेक्ट तकरीबन 70% कवर किया था, लेकिन बहुत सारे स्कूल में 40% तक कवर हो चुका था, मैं 10th तक बात कर रहा हूँ। अब रहा सवाल जो 12th क्लास है उनका भी तकरीबन 40% कवर हो चुका था। एक बड़ा सवाल मेरे जहन में भी आता है कि एग्जामिनेशन से कैसे हम जज कर पाएंगे कि ये स्टूडेंट ब्राइट है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम बराबर 100% सिलेबस का एग्जाम लें, हम एक बच्चे का 30% 40% से भी जान सकते हैं वो बच्चा किस लेवल पे है। अगर मैं बाहर की कंट्रीज का मुताला करता हूँ देखता हूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनेशन सिस्टम जिस तरह से हमारे यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का ये साल ज़ाया नहीं होना चाहिए, एग्जाम्स होने चाहिए, लेकिन अब जो अभी मैं
लेकिन
बात
जो
था,
पढ़ाई का हाँ, खामियाजा हुआ है इतने 3 महीनों में, और जो एक सिक्योरिटी का भी मसला है, और जैसे कि ये छात्रा भी बता रही थी कि कई तरह की कई जैसे घरों में टीचर पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो ना घर में हो सकती है ना मस्जिद में हो सकती है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी?
ये तो मसला है कि मतलब देखिए अब ये जो हो गया सो हो गया, अब हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे अगर हम डेफर करेंगे एग्जाम्स को मार्च तक
जी।
तो मुझे जरा समझाइए कि मार्च तक हम क्या कर पाएंगे, अगर इस वक्त सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं तो तब कैसे सिक्योरिटी देंगे? मुझे लगता है कि चूंकि अगर हम 12th का एग्जाम नहीं कर पाएंगे इस टाइम, बाद में अगर मार्च में करेंगे तो फिर वो आगे जो आने वाले इम्तिहान आते हैं फिर वो कैसे उनमें शामिल हो सकते
जी? आप एक शिक्षक हैं, ये बताइए कि कैसे हालात जो हैं सामान्य किए जा सकते हैं, जब आज जो है अभिभावक निकल कर आए हैं और कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो बच्चों
का। मैं समझता हूं कि ये जो कल आए थे कुछ लोग जो यहाँ के जो हुर्रियत के रहनुमा उनसे मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे माहौल में बात की। मैं कल सुना था एक टीवी प्रोग्राम पे काक साहब कुछ थे जो आए थे मिले थे इनसे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जब हुर्रियत वालों ने कुछ पॉइंट दिए कि जो भी कैदी हैं जो भी जेल खानों में चाहे स्टूडेंट या कुछ भी उनको रिहा किया जाए, मुझे लगता है उससे बहुत हालात सामान्य हो जाएंगे अगर उनको रिहा किया जाएगा, और वो बड़ी बात नहीं है उनको अगर जेल से कैद खानों से बाहर किया जाएगा, मुझे लगता है उसे बहुत मतलब एग्जाम कम से कम हो जाएंगे।
आम जनता को क्या करना चाहिए आपसे पूछेंगे, हमारे साथ 1800 पे एक कॉलर हैं, जी अपना नाम बताएं।
जी हेलो,
जी अपना नाम बताएं।
जी मेरा नाम राघव कुमार झा है।
जी राघव आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं बिहार जिला मधुबनी गाँव हटनी से बोल रहा हूँ।
जी राघव साहब, मैं अपनी आवाज सुन पा रही हूँ, आप पीछे से रेडियो भी सुन रहे हैं, समय बहुत कम है, अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप?
जी नहीं, रेडियो आप मैं नहीं सुन रहा हूँ, सवाल मेरा सवाल नहीं है, मेरा ये अपील है एक तरह से, तमाम जितने भी मुसलमान भाई हैं कश्मीर में, चाहे हिंदू हैं, जितने भी हैं, लेकिन खास कर अलगाववाद का नेतृत्व तो मुसलमान लोग ही कर रहे हैं, तो मेरा मुसलमान भाइयों से ही अपील है कि वो बहकावे में ना आए, इस्लामिक स्टेट की तरह या चाहे अलकायदा की तरह उनके प्रलोभनों में नहीं फंसे, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनकी नौकरियां बर्बाद हो रही है। ये अलगाववादी आजादी आजादी की बात करते हैं, आखिर किससे आजादी?
जी आजादी, जी आजादी की बात करती है और बच्चों का भविष्य उस जो है उस पर असर पड़ रहा है। शुजात हमारे साथ लाइन पे हैं। शुजात साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों का नाम लिए बगैर कहा कि अगर बच्चे निरक्षर रहे तो वो बंदूकें उठा लेंगे, लेकिन पिछले 25 सालों में लोगों को ये समझ आ गया है कि बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, अब वे निरक्षर बच्चों का समूह बनाना चाहते हैं जो पत्थर फेंकने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि वो बच्चों को जो है एक शील्ड की तरह, कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बयान एक और है, लेकिन क्या सरकार को नहीं करना चाहिए कुछ?
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो शील्ड करने की बात है, बाकी चीजें यहाँ तो अगर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन चार महीने में थी, यहाँ हर एक शख्स सड़क पे था, हर एक शख्स इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा था, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ज्यादा बात जो है इस्तेमाल करने की है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है और इसके लिए कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है, और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत रोल बनता है, उनका उनकी जो स्टेप्स लेने की जरूरत है, उनको वो देखने की जरूरत है, और यहाँ से भी शायद मुझे लगता है कि एक लचक पैदा करने की जरूरत है, और ताकि जो हमारे ये स्टूडेंट है, इनका जो भविष्य है, ये खराब ना हो जाए। लेकिन एक पॉलिटिकल सिचुएशन कश्मीर में है, मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की जरूरत है, हम इसको आइसोलेशन में देख नहीं सकते हैं। ये एक मसला है जिसके लिए माहौल जरूरी है। एक टीचर जो आपके साथ बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि चले आज हम डेफर करते हैं, लेकिन मार्च में आपको क्या गारंटी है कि एग्जाम हो जाएंगे? क्योंकि ये जो यहाँ पे सिचुएशन है, इसके लिए गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को खासतौर से स्टेप लेने की जरूरत है, रीच आउट करने की जरूरत है, एक डायलॉग प्रोसेस को शुरू करने की जरूरत है, ताकि एक माहौल बन जाए जिससे सारी चीजें खुली। ये सिर्फ एजुकेशन का मामला नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बिजनेसेस ठप है, कोई 15,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है लोगों का यहाँ पे।
जी बिल्कुल,
और उसके साथ लोग जुड़े हैं,
आप बात कर रहे हैं जी, ये
आप, लेकिन जब आपका जो ये जो जहन जो है, जो दिमाग जो है, जब वही परेशान है, जब वही मुंतशिर है, तो उसमें आप पढ़ाई क्या करेंगे? ये भी सही बात है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइडों को लचक पैदा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनको वो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे माहौल ठीक हो जाए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन जाए।
जी, हमारे साथ एक 1800 पे श्रोता है, कौन बोल रहे हैं?
सर, मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ।
जी मोहम्मद साहब, आप शुजात बुखारी को सुन रहे थे, उनका कहना था कि एक माहौल बनना चाहिए, आपका क्या कहना है?
जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने पहले अच्छे स्टेप उठाए होते तो ये नौबत नहीं आती।
तो जो है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए था पहले।
जी सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लापरवाही बरती और राज्य सरकार ने भी, तभी ये बुरे हालात हुए आज।
जी हम जो हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर माहौल सुधरता है तो ठीक हो सकेंगी चीज़ें, सब पटरी पे आ सकेंगी, माहौल सुधरने की गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको?
हाँ हाँ, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ जो पहल हो रही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर ये दो तीन चीज़ें जो इन्होंने सामने रखी, आज मैंने पेपर में पढ़ा, और ये बहुत ही आसान स्टेप्स है, बहुत ही आसान तरीके से ये कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एग्जाम्स हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तड़प रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि हमारा ये साल जाया ना हो।
लेकिन आम जनता किस तरह से आगे आ सकती है, आप एक शिक्षक भी हैं?
आम जनता तभी जनता, स्टूडेंट भी एक आम जनता ही है। मान लो कि अगर घर में 3 स्टूडेंट्स है वो एग्जाम देने के, उसके साथ साथ उनके वालिदैन भी आगे आएंगे तो वो भी सामने आएंगे, वो भी चाहते हैं।
नहीं, जैसे
मेरी एक छोटी बच्ची है, सुबह जब गाड़ी हॉर्न करती है वो कहती है पापा गाड़ी आ गई स्कूल की, इतनी वो तड़प रही है स्कूल जाने के लिए, परेशान सब है।
तो एक माहौल बनाना होगा और उसके लिए आम जनता को भी आना होगा हमारे साथ।
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसका बड़ा रोल है, गवर्नमेंट को भी एक पॉजिटिव स्टेप लेना है, उसको देखना है कि उन्होंने कौन से हमारे सामने पॉइंट्स रखे हैं, उन पर अगर अमल हो सके और मुझे लगता है वो बहुत आसान है।
जी बहुत आसान है। ये थे हमारे साथ शिक्षक और हमारे साथ श्रोताओं और वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत ने विशाखापट्टनम वनडे में न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने एफबीआई से कहा है कि वह बिना देर किए यह जानकारी दे कि ईमेल मामले की नए सिरे से जांच क्यों की जा रही है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कहना है कि बढ़ती हिंसा पर काबू करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ इंडिया बोल में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में दोबारा 9:30 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।